Thank you. तट पर आइए। महाप्रभु जी ने पूछा कि साध्य साधन के संबंध में बतलाओ। रामानंद जी ने विष्णु पुराण का श्लोक उदाहरण दिया, वर्णाश्रम आचारत कुशेन परापुमान विष्णु आराध्यते पंथा नन्नतोषक विष्णु पुराण। जिस प्रकार से हमारे संप्रदाय में समस्त भागवत को अमल प्रमाण कहा जाता है, उसी प्रकार से रामानुज संप्रदाय में प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है विष्णु पुराण। उस विष्णु पुराण से इस विष्णु पुराण में नीचे देखेंगे विष्णु पुराण में पराशर जी का ये वचन है। इसके साथ में और भी दो श्लोक और हैं इसके संबंध में। इसमें स्वधर्म आचरण से वर्णाश्रम धर्म से उत्पन्न भक्ति को चैतन्य महाप्रभु जी ने बाज्य बताया। कारण क्यों, हमने कारण अभी तक मुखबंध में बतलाया है। इसमें देहाशक्ति है और इसका फल भोग भी पृथ्वी पर ही है, भोग मोक्ष। और यदि उसको भी कहें सिद्ध लोगों की बात, जो निर्वाण मोक्ष पाते हैं उनको भी सिद्ध लोक में गति है, वैकुंठ में उनकी गति नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की भक्ति जो है, भक्ति तो आराध्य है, ठीक है, साध्य है, किंतु विष्णु पुराण में जो वर्णाश्रम से जो भक्ति होती है वो बाह्य है। और इसका कारण हमने पहले बतलाया है। विशेष करके महाप्रभु जी ने कहा यो बाग्य आगे कह आर, तब वो कहते हैं राय कहे कृष्ण कर्मार्पण श्राद्ध साध। कर्म बंधन है, इसलिए कृष्ण के चरणों में कर्मों को अर्पण करो। जो कुछ करते हो, जो कुछ खाओ, उसके लिए गीता का यह श्लोक प्रमाण दिया, जत करोषी जो कुछ करते हो, जदशनासी जो कुछ खाते हो, जज्जुहोषी जो कुछ हवन करते हो, ददासी जो कुछ दान करते हो, जत तपस्यासी जो तपस्या करते हो, हे कंत मुझको अर्पण करो। गीता में और भी कहा गया है यज्ञार्थात कर्मण लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कंतेय मुक्त संग समाचर। कर्मों में आसक्ति को संपूर्ण रूप से छोड़कर विष्णु के लिए ही जितने कर्म करो उनको प्रसन्न करने के लिए, तो ये यज्ञ होगा। और यदि ऐसा नहीं करेगा, अपने लिए करेगा तो बंधन। इसलिए कर्मों का तो त्याग करना है, किंतु कर्मों का कहां त्याग किया जाए, कहां त्याग करें। तो इसीलिए कृष्ण करें मां मेरे प्रति उसको अर्पण करो। एक चीज को समझो, एक अर्पण करके तब करना और एक करके तब अर्पण करना। हमने खाया लौकी की वैदिक की वाक जा क्रिया क्रिय थे मुने हरिश्यवान कुल्लेन साकार क्या भक्ति निश्चता कहा गया है। लौकी की भी, तो इसमें लौकी की को भी जो कुछ करते हैं, जो कुछ खाते हो, वो सब कुछ त्याग करो, नहीं तो बंधन होगा। दो उपाय है, पहले अपने को अर्पण कर लो। इति पुनसार्पिता विष्णु नौलक चरा क्रियते। क्या तात्पर्य? पहले अर्पण कर लो अपने को, मैं तुम्हारा हूं। मानस देह वह जो कुछ मो अर्पिनु तुआ पदे नन। पहले ये कर लो और इसके बाद में कर्म करो, बंधन नहीं होगा। और करके कर्म और तब अर्पण करोगे तो उसका फल तुच्छ होगा। इसे इसको समझो। इसलिए इसी श्लोक में भी कहा गया, भगवत भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, पहले अपने को अर्पण करो। ऐसा नहीं कि श्रवण कीर्तन करो और इसके बाद में ओ कृष्णाय नमः, कृष्णे अर्पणम अस्तु, ऐसा मत करो, ये बंधन है। थोड़ा सा डिफरेंस है, मालूम होता है जो कोई डिफरेंस ही नहीं है, किंतु है इसमें डिफरेंस। इसलिए यहां पर बतलाया, जत करो उसी, जो कुछ करो, हवन करो, खाओ पियो चलो फिरो, जो कुछ भी करो हमको अर्पण। प्रभु कहे इहो बाज्य। आगे कहा प्रभु जी ने, कहा इहो बाज्य। क्यों कहा? इसमें भी शरीर में आसक्ति है और स्वरूपानुबंधी, इसमें कुछ भी नहीं है सेवा की बात। कृष्ण की सेवा की बात इसमें क्या है? अभी तुम करो और तुम दो। तुम माने यह शरीर, इसलिए स्वरूपानुबंधी नहीं हुआ। आत्मागत ये नहीं है, इसलिए कहा ये हो बाज्य। इसको बाहरी बतलाया। राय कहे स्वधर्म त्याग एषाद्धसा। राय जी कह रहे हैं स्वधर्म त्याग। स्वधर्म माने आत्मधर्म को नहीं कह रहे, बड़ा समधर्म। अब तक तो बतलाया जो कुछ करो अर्पण करो, अर्पण में भी कृष्ण को तुम क्या अर्पण करोगे? कृष्ण का ही तो सब कुछ है, अर्पण तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारा कोई चीज रहे तब तो, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं है, इसलिए अर्पण भी ठीक नहीं। यथे श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है श्लोक। तो भी महाप्रभु जी ने कहा जी आगे कहिए, यो बाज्य बाहरी है, आत्मा से संबंधित स्वरूपानुबंधी नहीं है। भक्ति के सेवा, कृष्ण की सेवा के लिए कुछ है, इसमें संबंधी नहीं है। तब उन्होंने कहा स्वधर्म का त्याग। स्वधर्म का त्याग वर्णाश्रम धर्म का त्याग। स्वरूपतः ऐसा नहीं कि कर्म फल को त्याग कर दर हो गए। एक जगह गीता में भी कहा गया है सन्यासी च स, याद है हाँ, न चाक्रिय। जो कर्म फलों का त्याग करता है वो यथार्थ सन्यासी है, अन्यथा कर्म फल का त्याग नहीं करता वो सन्यासी भी है निरग्नि भी नहीं है कुछ भी। इसलिए यहां पर कह रहे हैं स्वधर्म का त्याग करो स्वरूपतः, कर्मों का फल भोग भी त्याग करो और साथ साथ उस कर्म को स्वरूपतः त्याग करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जीव गोस्वामी अपनी गीता की उसमें बतला रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की गीता प्रसिद्ध है, उसमें तो स्पष्ट रहे स्वरूपतः कर्मों का त्याग करो, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उसका संपूर्ण रूप से त्याग करो। वो कर्म कर्म नहीं है यदि भगवान के लिए किए गए, इसलिए उसको नहीं बतला रहे। स्वधर्म त्याग ऐसा That's it. Yes, sir, just explain. It had warning that he should not speak.
He could not hear.
Because the servants are coming in your explanation.
Omagyam Timurandasya Mirandana Salakaya Chakshivan Medita Tasmai Sri Gurave Namaha. So continuing the conversation between Sri Ramananda Rai and Sri Gauranga Mahaprabhu, please come to the banks of Godavari. So first, Sri Ramananda Rai quoted one verse from the Vishnu Puran. So this is from used in the Ramanuja Sampradaya as evidence, first spoken by Sri Parasamuni. So there, Sri Ramananda Rai explained, by following Swadharma, by following one's position in Vanashram, one will achieve bhakti. So Mahaprabhu explained that this is external. If you know more, you may speak more. So yesterday this was described. Why? Because the person who is performing his Swadharma, his position in Vanashram, along with his bhakti, he has so much attachment to this gross body, Deha Shakti. Also, he has desire for moksha. So, this type of mixed bhakti will not take him to a Vaikuntha, but may only take him up to Siddha Lok, liberation. So, it's true that bhakti is the sadhya, or the ultimate goal. But Varnashram Dharma is not the sadhya for attaining that type of bhakti. So for these reasons, Mahaprabhu rejected as external. If you know more, you may speak something higher. So, Sri Ramananda Rai said, by karma apanam, by offering one's the fruits of one's activities to Krishna, this is the highest goal of life. So in Bhagavad Gita, so we know that karma or fruited activity is bondage. So therefore that activity which causes bondage, that same activity should be offered to Krishna. Like Krishna says in Bhagavad Gita, yat karosi yadasnasi yajahosi yadasya yat tapasasi kunteya tatpurusham marapanam. O Arjuna, yat karosi, whatever you do, yadasnasi, whatever you eat, yajahosi, whatever yagi you perform, whatever austerities you perform, give that as an offering to Tat Purush, the Supreme Lord. So also in Gita, there it says, O Arjuna, whatever you do as a fruited activity causes bondage, and whatever you do for Vishnu is the cause of liberation. Yagnat kamato yato yuloko yam karma bandana. So, one should leave this all types of karma, and instead of trying to enjoy the fruits for oneself, one should offer the results to Krishna. So there's two types of conception here. One is to first perform your karma, your own fruitive activities, and then after you've done it, then you offer the result to Krishna. Or the second or superior method is first offer yourself to Krishna, and then perform your activities in this world. They look a little bit similar, but there is a vast difference between them. Like Sri Prahlad Maharaj suggested, Iti Pum Sakita Vishnu Bhaktishanava Lakshanam Kriyatam Bhagavatam Adam Manyata Adara Uttamam. Iti Pum Sakita Vishnu. First completely offer yourself to Vishnu, then perform the 9 minutes devotion. Srila Bhaktivinoda Thakur said, Mana Siddeho Gayo Jankichumo Apira Duapada Nanda Kishore. O Nanda Kishore, Krishna, whatever I have, this body, and that is related to this body, everything is yours. So, this is Mahaprabhu also rejected this as external. Why? Because in this there is also so much attachment to the body, And there is no question of direct service to Bhagavan. There is no question of Atma Sambandhi, no heart-to-heart relationship with the Lord. The activities here are not themselves composed of bhakti. They are done with the body and the result is offered to the Lord. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu rejected these as these are external. So Mahaprabhu said, this is external, if you know more, you may talk more. So then Sri Ramananda Roy came up with a suggestion, Swadharma Tyag. Because ultimately, if one wants to offer one's karma to Krishna, then Krishna actually owns everything. So what can you offer him anyway? So no question of that. So everything belongs to Krishna, therefore one should simply renounce or leave one's material designation in Varnashram. So one should be very careful to avoid that which is against bhakti. So giving up all one's upadi means relationship with his body. One should perform bhakti. This is the ultimate goal of life.
तो स्वधर्म त्याग के संबंध में स्वधर्म त्याग के संबंध में दो उदाहरण दिए गए, एक श्रीमद्भागवत से एक गीता से। अज्ञायैव गुणान् दोषान् मयादृष्टान् स्वकान् धर्मान संतज्य जह पुमान सर्वान मां भजेत सच सप्तम। वेद शास्त्र और पुराण इत्यादि धर्म शास्त्रों में भगवान ने जो कुछ धर्म का उपदेश दिया है कि ये तुमको करना चाहिए, तुम्हारा जो धर्म है उसका गुण और दोष विचार कर और उनको छोड़ करके जो हमारा भजन करते हैं वे सत्तम है, स उत्तम सत्तम। इसमें एक विचार समझो, स्वधर्म का त्याग कौन करता है? तीन प्रकार के व्यक्ति स्वधर्म का त्याग करते हैं। एक तो मूर्ख, जिसको हिताहित का कर्म का ज्ञान नहीं, मूर्ख अज्ञानी। और दूसरा नास्तिक व्यक्ति, इन कर्मों में विश्वास नहीं रखता। कैसे विश्वास नहीं रखता? आज आप लोग साक्षी गोपाल में गए, ये गोपाल वृंदावन में रह रहे थे और साक्षी देने के लिए विद्यानगर आए। कितने माइल आए, हजारों माइल, 5,000-6,000, वो भी पैदल आए और साक्षी दिया और वहां से जगन्नाथ जी के मंदिर में आए और भोग लगने पर उनका सारा प्रसाद हजारों मन भोजन खुद कर लेते और जगन्नाथ के लिए कुछ नहीं रखते, भूखे रहने लगे। उपवास साक्षी स्वरूप में, साक्षी गोपाल में, तब उनको काफी जमीन जायदाद दे करके मंदिर बना करके वहां रखा गया। तो वो मूर्ति है नरसिंह भगवान है, लोगों को फिर भी विश्वास नहीं होता। जो ठाकुर जी कहते हैं, ये हमको जो सोदा मैया मक्खन खिलाती थी, अब तुम नमक भी नहीं देता, मुझसे खाया नहीं जाता, ऐसा मूर्ति बातचीत करती है तो नास्तिकों को ये सब देख करके भी सब कहते हैं ये सब ढकोसला है बेकार। तो नास्तिकों को कर्मों में विश्वास नहीं, ये पिता की सेवा करने से अगले जन्म में वो सुखी होगा, माता की सेवा करने से वो सुखी रहेगा, इस कर्मों में विश्वास नहीं। इसलिए नास्तिक व्यक्ति ये सब सब कर्मों को वेद विहित कर्मों को नहीं करता, उनमें विश्वास नहीं। और तीसरा जिनको भक्ति में दृढ़ विश्वास है, शास्त्र के वचनों में भी दृढ़ विश्वास है, ऐसा व्यक्ति शास्त्रों के उपदेश अनुसार गीता और भागवत के अनुसार सब धर्मों का त्याग करता है। किस स्थिति में? एक स्थिति है, वो स्थिति है तावत कर्मानि कुर्वीत न निर्वेदेत जावता मत कथा शरणादो वा श्रद्धा जमन न जाए। क्या कहा शुरू में? तावत कर्मानि कुर्वीत, ये कर्म तब तक करो चाहे वो भगवत अर्पित हो चाहे जैसा भी कर्म हो, उन कर्मों को कब तक करें? तावत कर्मान कुर्वीत न निर्विदेत जाओ, जब तक कि कर्मों के फलों को देख करके भोग करके शास्त्रों को वचनों को देख करके उसे निर्वेद नहीं हो जाता। बेकार, ये बंधन का ये कर्म छोड़ो इन सब, तब वो कर्मों को छोड़ेगा। अथवा वा श्रद्धा न जावते, जब तक कि भगवान की कथाओं में लीला कथाओं में भगवान की कथाओं में सुनने में श्रद्धा नहीं आती तब तक करो, और जहां श्रद्धा हो गई छोड़ो, तब भगवान के लीला कथाओं को सुनो, भगवान के लिए सारी क्रियाओं को करो। इसलिए ऐसा श्रद्धालु लोग शास्त्र वचनों पर विश्वास रख करके, किंतु ये समझ रखो इन दोनों के मूल में क्या है, साधु संघ। साधु संघ सबके मूल में है, उसी से निर्वेद होगा और उसी से हरि कथा सुन करके इनके प्रति भी भावना कर्मों का त्याग।
So now, Sri Raghavananda is explaining to Chaitanya Mahaprabhu about the Dharma Tyag. It means to renounce one's religious duties in this world. He says this Dharma Tyag Sarva Sadhya Sar, it's the essence of the objectives in life. So for this, he gave two pramanas, two evidences, one from Srimad Bhagavatam and one from Bhagavad Gita. So, in Srimad Bhagavatam he stated, Agyayeva Maya Doshan, that you should follow the Vedic injunctions. Krishna tells Uddhava, you should follow the injunctions of the Vedas. But a person who has very carefully, thoughtfully examined them, and after due consideration of the merit of following one's duties and also the defects in following one's duties, he leaves all performance of duty to engage in bhajan, to engage exclusively in devotional service, then that person, he is the best of all. So Srila Gurudev is now analyzing this statement and explaining that there are three types of people who neglect to perform their religious duties in Varnashram Dharma. So the first category, they are called the Murkha or Agyani, foolish people who are completely ignorant. So ignorant and foolish people, they can neglect duty because they have no proper understanding of what is to be done, what is not to be done.
Then the second type, they're called Gnostic, atheists. Those who have no faith in Bhagavan, in God, no faith in performance of karma, because karma is recommended in the Shastras. So, Srila Gurudev gave an example. Shakshi Gopal, you went for darshan of Shakshi Gopal today. He was staying in Vrindavan, but he walked thousands of miles from Vrindavan all the way to Vidyanagar in South India to play the role as a witness in a dispute. And then after that, he came to the Jagannath Mandir and he was taking all the bhog, which is supposed to be offered to Lord Jagannath. And Lord Jagannath had to fast completely and do nirjal. So the king took him from that temple and kept him in the temple where he is today, where he all went today. So some people think, Shakshi Gopal is a murti, he's a statue. How can he walk, how can he talk and do pastimes like this? So such persons, they have no faith. So those who are Gnostic, those are atheists. Also we see that Sanatana Goswami, he was serving Madan Mohan. Madan Mohan was playing in Mathura with the son of Chaturvedi Chauvin, Chaturvedi Brahmin lady. And when Sanatana Goswami was offering him just the flour and water mixed together and cooked in a fire, he said, "Oh, my throat is very dry, I cannot digest this." So many people, they don't believe that the deity will speak with you. So they are atheists. They don't even believe that by performing karmas, proper duties in this life, such as serving mother and father, that you can become happily situated in this world. So those persons who have no faith, they are atheists, they are called Gnostic. They can also neglect their duty. But the third category, this is the category which is spoken about in this verse of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, chapter 11. So, in this verse, a different person is being spoken about. It speaks about those who have a very strong faith in the Shastra, and yet they also give up the Shastric injunction to perform duties. Why? Such persons who have a strong faith in Shastra, but they don't follow the injunction to perform duties, they also have a particular qualification. That has been spoken about in Srimad Bhagavatam. Tavat karmani kurvita nani vidyeti yavata. It is stated that as long as a person has not become nived, means they understand that to perform duties in this world, this is a temporary thing, this is a material activity, ultimately it has no transcendental value or relationship with the soul, and therefore they become completely discouraged and uninspired to perform material activities in this world. And matkata shavanado, those who have become discouraged and realize that to perform the religious activities, karma, has no transcendental value, and they also develop shraddha, strong faith in the power of Harikatha, those persons are qualified to leave behind or neglect prescribed duties. So the third personality, who has strong faith in Shastra and yet neglects the injunction to perform duties, he has to have two qualifications. First, he realizes, he becomes totally discouraged with the value of performing the karmas in this world, because he realizes that they have no eternal value. And secondly, he's developed faith in Harikatha. Now, the root cause of these two qualities is what? Sadhu Sangha, the association of a sadhu. So those who have sadhu sangha and they develop these two characteristics, they can renounce the performance of prescribed duties.
So Srimad Bhagavat wale shlok mein jat sarvan samtajya mang bhajet sa sattama. Sattama mane kya? कृपालु अकृतद्रोह मौनी सप्तसार विजित सड़गुण और ये 26 गुण बतलाए गए हैं। इनको सप्तम कहा गया है, इनको ये सब गुण हो तो इस व्यक्ति को जो सब धर्मों को छोड़ करके हमारे आदेश को भी छोड़ करके गुण दोष विचार करके हमारा भजन करता है वो भी ऐसा ही सप्तम है जैसा कि वो लोग हैं 26 गुण वाले, इसलिए सप्तम कहा। और भी एक श्लोक उन्होंने कहा राय रामानंद जी ने, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ करके, मैंने यहां पर वर्णाश्रम धर्म समझना, शरीर और मन से जो वर्णाश्रम धर्म किया जाता है, सब धर्म जो अब तक कह गए हैं कृष्ण पैसे सबको छोड़ करके, माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम कृष्ण देखो अग्नि के द्वारा मुझ को, मैं जो कृष्ण हूं एकमात्र हमको शरणम ब्रज, हमारा शरणागत हो, अहम त्वाम सर्व पापे भो मुक्षयिष्यामि, समस्त पापों से यदि कुछ इसमें पाप भी है छोड़ने से धर्म को तो शोक मत करो, मैं सबसे छुटकारा करूं। सब धर्मान प्रत्यज्य, वर्णाश्रम धर्म का त्याग किया और एकमात्र कृष्ण को के चरणों में शरणागत हुआ। किंतु एक बात है, अर्जुन को मालूम होता है यहां माता पिता घर बार स्त्री पुत्र सब छोड़ देंगे, विवाहिता स्त्री को छोड़ देंगे तो पाप लग सकता है, पाप लगेगा क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया है। तो कृष्ण कहते हैं डरो मत, सब पापों से छुटकारा दे दूंगा, मुक्ति कर दूंगा, मुक्ति दे दूंगा। इसमें मालूम होता है कि थोड़ा थोड़ा डर है, भगवान के शरणागत में आकर और धर्मों को छोड़ देने में इसको डर है, माता को पिता को भाई को बंधु को देश को समाज करके छोड़ करके जाने में, वृद्ध माता पिता को छोड़ करके जाने में ये तो पाप लगेगा। किंतु भागवत में कहा गया है जो सबको छोड़ करके पितृ ऋण ऋषि ऋण देव ऋण वो मुकुंद उनको छुटकारा दे देते हैं, इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, शरणागति कृष्ण के प्रति सबको छोड़कर के शरणागत होना ये तो बहुत ऊंची बात है। महाप्रभु जी ने इसको भी कहा, यह बात जागे कहा, इसको भी बारी बतलाया, शरणागति, शरणागति क्या है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से विवर्जन रक्षति के विश्वासो वक्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वविधम प्रति अनुकल्प, भक्ति के अनुकूल जो हो दृढ़ता से उसको ग्रहण करो, दृढ़ता से उसमें बाधा आई तो बाधा मत मानो, भक्ति के अनुकूल हो और भक्ति के प्रतिकूल अपना प्रिय से प्रिय व्यक्ति या कोई कार्य भी है उसको छोड़ो, भक्ति के अनुकूल ग्रहण, भक्ति के प्रतिकूल उसका देहता शिष्य। और कृष्ण रक्षा करने वाले हैं, हम उनका शरणागत होते हैं, रक्षा स्थिति विश्वास हो और दम दृढ़ विश्वास हो कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, रक्षा स्थिति विश्वास हो। गोपतित्व वर्णन, अब उसको वर्ण कर लिया कि वही हमारी रक्षा है, दूसरा नहीं। यदि विपत्ति आई तो बिलबिलाने लगे कृष्ण भूल गए, जब तक ठीक है तब तक तो ठीक है, मैं शरणागत हूं। आज जहां विपत्ति आई था कृष्ण को छोड़कर के हमारी रक्षा करो दूसरों से, यह शरणागति नहीं है। वक्तित्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो दीन ही तिनादपि सुनी। और कार्पण्य, कार्पण्य आत्मनिक्षेप, आत्मसमर्पण, इसको कहा गया है शरणागति। शरणागति भक्ति का अंग नहीं है, भक्ति का सोपान है, आपको वो सोपान वहां तक पहुंचा देगी, कहां भक्ति के दरवाजे तक पहुंचाएगी, भक्ति अभी नहीं, इसमें सेवा नहीं है, स्वरूपगत नहीं है, इसमें सोपान है ऐसी उच्च कोटि की। अर्जुन को भगवान ने जबकि ये उपदेश दिया उस समय अर्जुन मन ही मन सोच रहे हैं बृहद भगवतामृत के अनुसार, सोच रहे हैं, गीता में तो इसका कोई पता नहीं चलता, बृहद भगवतामृत मैं सखा इनका और हमको ये सर्वधर्मान का उपदेश दे रहे हैं, क्या मैं शरणागत भी नहीं हूं? इसलिए हमको इन्होंने वंचना की ये उपदेशों से, ये सब वंचनाएं हमारे लिए। हमको तो यदि कहते ये हमको ब्रज भक्ति दीजिए, तुम ब्रज की भक्ति करो, हमारा आशीर्वाद है, हमारे कृपा से तुमको ब्रज की भक्ति मिल गई, तो ये कृपा होगी, और ये तो हमारी वंचना हुई। क्या सचमुच में अर्जुन सखा होने पर भी भगवान के शरणागत नहीं थे जो उनको कहा? हे सखा थे, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसा उन्होंने कहा। तो यह बात ये करने का तात्पर्य क्या है? ये बाहरी है, इसमें आत्मा संबंधी है नहीं है, स्वरूपानुबंधी नहीं है, इसमें कृष्ण की कोई सेवा भी नहीं है। और डर भी है कि ये वेद शास्त्रों का आदेश नहीं पालन करने से तो हमें पाप लगेगा। इन सब कारणों से महाप्रभु जी ने कहा, यह बात आगे कहा, राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साधु। अब तक तो कर्म मिश्रा भक्ति का वर्णन किया, अब यहां पर शुद्ध भक्ति, यहां कर्त ज्ञान मिश्रा भक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। ज्ञाने प्रयास आचरण, ये सुदृष्टि
Dharmatyag, renouncing duties, the first verse quoted by Sivamananda Rai. In the last line, it's Krishna saying to Uddhavji, Mamba Jeta Satottama.
You want to speak something?
That person
who
sees all the attributes and defects of Vedic injunctions and then decides to leave them completely to do my bhajan,
Man Bhajeta Tatustama. He is the highest, best person. So, what is the meaning of Tatustama? Who is Tatustama? Sri Guru explained in Srimad Bhagavatam, the 26 qualities of a devotee have been listed, Kripa, Loha, Krishna, Doha, Mana, to be very compassionate, to be silent, grateful, all of these qualities are there. So a person in whom these 26 qualities are manifest, he is called Satottama. So after explaining this verse, Rai Ramananda quoted another verse from Gita, Sarva Dhamam Prityajamami Kamasharam Raja Amtam Sava Papivyom Vakshayasharam Vatucha. So first he said, Sarva Dhamam Prityajamami, give up all dharma. This dharma refers to Varnashram Dharma, or the dharma which is related to the physical body and the subtle material mind. So Krishna said, leave all these and Mame Kam Sharna, surrender to my lotus feet. And if you will do this, then Aham Tam Sarva Pape Dio Mokshayishami, I will deliver you from all types of simple reactions. Do not fear. So why is Krishna saying, I'll deliver you from sinful reactions? And why is he saying, don't be afraid? Because the dharma of the body and mind includes living with one's family, wife, children, taking care of one's aged parents, and all of these things. So Shastra says, if you'll leave your wife, if you'll neglect your young children, if you'll not take care of your aged parents, this is very, very sinful. And therefore, if a person is considering doing this, some fear will come in his mind. Should I do it or not? This fear will be there. So therefore, Krishna said, why? They're afraid because sinful reactions will come and they'll have to taste those sinful reactions. So Krishna says, Aham tam sava papyebhyo. Oh, I will protect you from the sin of doing that comes from doing this. Maasuchaha, don't be afraid. So, some fear may come, but Srimad Bhagavatam also gives the same conclusion. Devashi bhuktatta nunam pitinam nakim karanayam runicha rajan sarvakana yosharam shanam gatomukundam pariritikartam. In this world, everyone who is born, they have so many debts. They're indebted to the demigods, to the sages, to their forefathers, to other living entities, to the king of the society. They have so many debts, and they'll have to do their prescribed duties. By performing their prescribed duties, they become free from their debts or the punishment which is incurred by not paying off those debts. But if someone will surrender completely to Sri Krishna, then they are no longer indebted to anyone. Srimad Bhagavatam gives this conclusion. So to leave everything for Krishna service is actually not a problem. There's no necessity of being afraid. So then, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he rejected this suggestion of the karma tyag or dharma tyag, and then he suggested sharanagati. So in this verse, sarva dhammam pratyajya, leave all karma, but mame kam sharanam raja, one should do sharanagati. So sharanagati, surrender to God, this is a very high thing. So why is it that after hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Eho Vaya Anitya, this sharanagati, surrender to Krishna, is also external. I want to hear something superior. So, first we should know what is sharanagati. In Hari Bhakti Sudhodaya, there the definition of sharanagati has been given. Anukul yasya sankalpa, patikul yasya vajjanam, rakshishati kirishaso, sopitve banantana. Atmanikshepana karpanye sadviram prikilapta sharanagati. So here, sharanagati has six angas. Sadanga sharanagati. Six limbs. First of all, anukulyasya sankalpa. One should make a very strong, determined, unbreakable vow that those things which are favorable for devotional service must accept them. Then, patikulyasya vivarjanam. Anything which is unfavorable or detrimental to the devotional service, one should leave this. Even if someone you know who is most dear to you but their association is unfavorable, must be given up. So then Rakshishitiki Vishvaso, at the time of danger, who will protect me? Oh, I have very strong confidence that Sri Krishna will protect me. That is called Rakshishitiki Vishvas. Confidence that Krishna will protect me. Then Gopika Ibarna, who will maintain me? Who will maintain my life now and in the future? So if my husband comes along, then one thinks, oh, my husband will maintain me and forget Krishna. This is not charanagati. To have a very strong faith, Krishna will maintain me at every step of my life. So then, Atmanik Chaitana Karpanye. Karpanye means to always be very meek and humble. Chinada Pisunich Bhav. To consider oneself more insignificant than a blade of grass. And Atmanik Chaitana means to have no independent desire. So this Sharanagati, what is it? Actually, this is not bhakti, but it's the step leading towards bhakti, or it's the door through which one must go to enter into the realm of bhakti. Because in this verse, Sarvadhamam Pratyajam Mamekam Sharanam Braja, there is no mention of direct devotional service to Sri Krishna. This in Brihad Bhagavatamrita, Arjuna himself, he was speaking with Narad about the time when he received the instructions of Gita, because Narad glorified him. Oh, you are great personality, Krishna has directly instructed you about Gita. But what was Arjuna's opinion in regard to this? He said, actually, I am really not the true recipient of Sri Krishna's mercy. Why? Because I am Krishna's friend. I have a relationship with him as a friend. But what did he say to me? He told me, oh, you should do Sharanagati. This is the way to bhakti. But I have already established a relationship as a friend. So therefore, by giving me these instructions of Gita, this is not really to receiving Krishna's mercy. But what is it? Krishna cheated me. I have been cheated. If Krishna had given me a blessing, then I could attain Braja Bhakti, service of Sri Krishna in Braj. Oh, then this would have been a blessing. But instead he told me, you should do Sharanagati. So I have been cheated. So this teaching, this is for the people in general, to teach, give instructions to people in general. Because in Sharanagati, there's no conception of Swarup Anubandhi, the eternal relationship between the Swarup of the soul and the Swarup of the Supreme Personality of Godhead. And in here, there's no description of direct Krishna Seva. And also, Master Chahar, Krishna, don't be afraid. So the actual Sharanagati mentioned in this verse is inspired out of fear, not out of loving relationship. So Chaitanya Mahaprabhu said, Eho Vaya